अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 4 है। नॉवेल डॉक्टर दुआगु, पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसन्निफ इब्ने सफी। तो आइए सुनते हैं पार्ट 4। अगर ज्यादा आवाज से रेडियो खोला तो पागल हो जाऊंगा, समझे? इसने खिड़की से इन्हें मुक्का दिखाकर कहा। इन्होंने सिर्फ दांत निकाल दिया और सुलेमान रेडियो का प्लग साकेट में नष्ट करने लगा। इमरान फिर अपनी कुर्सी पर आ बैठा था। अब वो जिस्म को ढीला छोड़कर हज़्बे आदत टांगे हिलाने लगा, लेकिन फिर इस तरह चौका जैसे कोई खास बात याद आ गई हो। मेज की तरफ खींच कर इशारिया 2.5 का स्याही माइल पिस्तौल निकाला और इसका मैगजीन चेक करके जेब में डाला। अब शायद फिर कहीं जाने की तैयारी की थी। दफ्तर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई झपट कर कमरे में दाखिल हुआ हो। इमरान दरवाजे की तरफ झपट पड़ा। ये एक बड़ी स्याह रंग की लंबी और गुंजाम दुम वाली बिल्ली थी। इसके पीछे एक बगदारी सा देसी बिल्ला भी नजर आया जो उसे दौड़ाए हुए था। अबे अबे इमरान धाड़ा, इसने यूं ही खामखा दोनों के दरमियान हायल होना चाहा, लेकिन वो नामाकुल बिल्ला गुर्राता हुआ इमरान ही पर झपट पड़ा। अब इस सियामी बिल्ली का कहीं पता ना था, लेकिन इमरान और बिल्ले में बाकायदा ठन गई थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो बिल्ला पागल ही हो गया हो, झपट झपट कर हमले कर रहा था। अगर इमरान में भी बंदरों जैसा फुर्तीलापन ना होता तो शायद अब तक कभी का जख्मी हो चुका होता। सुलेमान और जोजा खिड़की के सलाखे पकड़े जोर जोर से कहके लगा रहे थे। इमरान ने जब देखा कि फ्री स्टाइल का माहिर ये बिल्ला किसी तरह पीछे ही नहीं छोड़ता, तो इसने जेब से पिस्तौल निकाल कर एक फायर कर ही दिया। गोली खोपड़ी पर बैठी और बिल्ला कई फुट उछलकर फर्श पर आ रहा। जोजा और सुलेमान भी हंसते हुए इसी कमरे में आ गए थे। बिल्ली कहाँ गई? इमरान चारों तरफ देखता हुआ बोला। बिल्ली, बिल्ली, जोजा हंसता हुआ बोला। इस बेचारी को ना मारो बॉस, इस बेचारी का क्या कसूर है? इमरान दरवाजे की तरफ झपटा, फिर सारा फ्लैट छान मारा, लेकिन बिल्ली का कहीं पता ना था। सियामी बिल्ली वो एक जगह रुक कर बड़बड़ाया और किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर थोड़ी देर बाद एक्स-रे वाले फोन पर जोलिया डॉक्टर के नंबर डायल कर रहा था। दूसरी तरफ से जवाब मिल जाने पर इसने कहा, जोलिया, इमरान के फ्लैट में एक बिल्ले की लाश पड़ी हुई है, इसे उठवा लो। इसके नाखूनों पर किसी किस्म का जहर तलाश करना है, ओवर एंड ऑल। फिर वो जोजा की तरफ आया जो मुर्दा बिल्ले को उलट पुलट कर देख रहा था। दूसरी सुबह इमरान ने सबसे पहले प्राइवेट फोन से मुंसलका टेप रिकॉर्ड का स्विच ऑन किया। जोलियन आफ्टर वाटर का पैगाम मौजूद था। वो कह रही थी कि आपका ख्याल दुरुस्त था, बिल्ले के नाखून किसी बहुत ही मोहलिक किस्म के जहर में डूबे गए थे। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मामूली खराश ही मौत के घाट उतार देने के लिए काफी होती। क्या मैं इमरान से मिल सकती हूँ? इमरान ने टेप रिकॉर्ड बंद किया, जोलिया के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से जवाब मिलने में देर ना लगी। इमरान माउथ पीस में कह रहा था, तुम इमरान से नहीं मिल सकती, जितना कहा जाए इतना ही करो। रिसीवर रखकर नाश्ते के लिए शोर मचाते लगा। पिछली रात इस तरह सोया था जैसे इससे ज्यादा मुतमईन आदमी रूए जमीन पर ना पाया जाता हो। कई मातहत रात भर फ्लैट की निगरानी करते रहे थे। हवाई जरूरी और नाश्ते से फारिग होकर इसने लिबास तब्दील किया, कड़ाई की घड़ी पर नजर डाली और बाहर निकल आया। 2 सीटें गैराज में थी, इसलिए कुछ दूर पैदल भी चलना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद वो एक मामूली सी चाय खाने में नजर आया जिसकी तलाश थी। इस पर नजर पड़ते ही बांछें खुल गईं। ये थे उस्ताद महबूब निराले आलम, बेपना किस्म के शायर, शायर किस पाए के होंगे, ये तो तखल्लुस ही से जाहिर था। इतना लंबा चौड़ा तखल्लुस शायरी किसी माई के लाल को नसीब हुआ हो। महबूब निराले आलम उस्ताद का कौल था कि बड़ा शायर वही होता है जिसके यहाँ इनफरादियत बेतहाशा पाई जाती हो, लिहाजा इनका कहा हुआ शेर हमेशा बेवजन होता था। फरमाते थे वजन तो सभी की शायरी में होता है, लिहाजा मेरी बेवजनी ही मेरा इनफरादियत है और इस तरह मुझे बहुत बड़ा शायर तस्लीम किया जाना चाहिए। बसर औकात के लिए फेरी लगाकर मसालेदार सौंधे चने बेचते थे। मकबूलियत का ये आलम था कि जो भी पकड़ पाता बुरी तरह जकड़ लेता। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि सुनने सुनाने के चक्कर में उस्ताद हफ्तों धंधों से दूर रहते। बड़े बड़े लोगों से याराना था फिर इमरान कैसे महरूम रहता। इस वक्त उस्ताद पर नजर पड़ते ही लहक कर इनकी तरफ झपटा था और उस्ताद अपने मखसूस अंदाज में दांत निकाले हुए उसकी गर्मजोशी का जवाब दे रहा था। कोई उम्दा सा शायर उस्ताद इमरान इन्हें की मेज पर जमता हुआ बोला। उस्ताद ने मुंह ऊपर उठाया, थोड़ी देर नाक धुएं पर जोर देते रहे, फिर झूम कर बोले, सुनिए। हुस्न को आफ्ताब में सनम हो गया है, हुस्न को आफ्ताब में सनम हो गया है, आशिकी को ज़रूर बेखुदी का गम हो गया है। जवाब नहीं है उस्ताद, इमरान ने मेज़ पर हाथ मार कर कहा। अच्छा उठिए। कहाँ, उस्ताद ने पूछा। जहाँ ले चलो, इमरान ने बाएं हाथ दबा कर आहिस्ता से कहा। एक डॉक्टर की नर्स पर दिला गया है, बार बार जाने का कुछ तो जवाब होना ही चाहिए। आज आपको मरीज बनाकर ले जाऊंगा। डॉक्टर ने दांत निकाल दिए और बोले, किस डॉक्टर का किस्सा है? डॉक्टर दुआगो। ये कौन है, उस्ताद ने नाक भुआवें पर जोर देते हुए पूछा। हैं एक, आइए। इमरान उस्ताद का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचता हुआ बोला, ये गाड़ी आपकी बड़ी जोरदार है। उस्ताद टू सीटर बैठते हुए बोले, बस मियाँ बीवी बैठ सकते हैं। हम में बीवी कौन है उस्ताद, इमरान ने पूछा और उस्ताद ही करके रह गया। फिर बोले, पिछली रात मुझमें गालिब की रूह हलूल कर गई थी। सुनो, तुम भला बात आओगे गालिब, रास्ते में चढ़ाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुम को मगर नहीं आती। ये तो वजनदार है उस्ताद, इमरान ने हैरत से कहा। मैंने बताया ना, गालिब की रूह हलूल कर गई थी, फिर वजन कैसे ना होता। अक्सर उस्ताद के जिस्म में बाग मशहूर मुतकदीन की रूहें भी हलूल कर जाती थी और वो वजन अशार भी कह लेते थे। मुताखरी में तो वो किसी को काबिल एतना ही नहीं समझते थे। डॉक्टर दुआजू की नर्स या सेक्रेटरी ने एक तवील मुस्कुराहट के साथ इनका इस्तकबाल किया। वो इस वक्त वजीर ट्रस्ट रजिस्टर की औराक उलट रही थी। गुंजाइश निकल सकेगी, इमरान ने अंग्रेजी में पूछा, एक मरीज लाया हूँ। मरीज के नाम पर वो इस तरह चौंकी जैसे कुछ याद आ गया हो, फिर मूड भी कुछ बिगड़ता सा नजर आया और वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, वो नेगरू तुम्हारा मुलाजिम था, मुझे अफसोस है मोहतरमा। इमरान ने ठंडी सांस ली, मैं नहीं जानता था कि वो नाजायज तुम जैसी रश्क बाहर से झगड़ा कर बैठेगा। नहायत बेहुदा आदमी है, तुम इसे किस तरह बर्दाश्त करते हो। एक दुख भरी कहानी है, इमरान ने गमनाक लहजे में कहा, फिर कभी सुनाऊंगा। हाँ ये लो। इसने जेब से 10-10 के 5 नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिए और बोला, नाम है उस्ताद महबूब निराले आलम, खास किस्म के ज़हनी फतूर में मुबतला हैं, रजिस्टर में दर्ज कर लो। मार्था ने नोट लिए और रजिस्टर में कुछ लिखने लगी, फिर हाथ हिलाकर कहा, इस कमरे में इंतज़ार करो। इमरान दरवाजे की तरफ मुड़ा लेकिन मार्था जल्दी से बोली, तुम नहीं, इन्हें जाने दो। इमरान ने ठंडी सांस ली और उस्ताद से बोला, आप जरा देर इस कमरे में बैठे, मैं अभी आया। साद ने मनीखेज अंदाज में पलकें झपकाईं और दूसरे कमरे में चले गए। मैं तो कल इसे गोली मार देती, मार्था ने हाथ हिलाकर बैठने का इशारा करते हुए कहा। ना मारकर तुमने मुझ पर जुल्म किया है, इमरान ठंडी सांस लेकर बैठता हुआ बोला। मार्था ने इसे इस्तेफामिया अंदाज में देखा और जवाब तल नजरों से देखकर रह गई। इमरान अब दूसरी तरफ देख रहा था और हर ज्यादा टांगे हिल रही थी। मैं इसका मतलब नहीं समझी, मार्था ने कुछ देर बाद कहा। किसका मतलब, इमरान ने हैरत से कहा। इस हबशी के मुतालिक, तुमने कहा था कि मैंने इसे गोली ना मारकर तुम पर जुल्म किया था। ओह हाँ हाँ, मैं इससे तंग आ गया हूँ, निकाल बार करो, यह बेहुदा है। कई बार निकाल चुका हूँ, इमरान ने मायूसाना अंदाज में कहा। फिर चौंक कर बोला, डॉक्टर कितनी देर बाद मिलेंगे? कम अज कम 20 मिनट जरूर लगेंगे, वो इसकी आंखों में देखती हुई मुस्कुराई, फिर बोली, तो मैं पहले भिजवा रही हूँ। ओफो, यक देख इमरान उछल पड़ा और खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखता हुआ बोला, मेरे खुदा कितना खौफनाक मंजर था। बस, मार्था हाथ उठाकर बोली, मैं समझ गया अब तुम इस खुदकुशी के मुतालिक बोर करोगे। बाप रे, किस तरह तड़प रहा था बेचारा। मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगी, वो दोनों कानों में उंगलियां ठूस कर बोली। अच्छी, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, बात यह है कि मैं उसे पहचानता था, इसकी बीवी बहुत गमगीन है। जरूर होगी, मार्था ने गुस्सीले लहजे में कहा। फिर कलाई की घड़ी देखकर बोली, मेरा ख्याल है कि अब तुम अपने मरीज को अंदर ले जाओ। फिर इसने मेज पर रखी हुई घंटी बजाई। एक चपरासी नुमा आदमी अंदर आया। क्या नाम था, मार्था ने इमरान से पूछा। फिर खुद ही रजिस्टर पर झुककर उस्ताद महबूब निराले आलम का नाम पढ़ने की कोशिश करने लगी। उस्ताद महबूब निराले आलम, इमरान ने चपरासी से कहा और चपरासी बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उस्ताद कमरे में तशरीफ लाए और मार्था को कंखियों से देखते हुए मुंह चलाने लगा। इमरान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुट्ठी भर खस्ता करारे चने चबाए बगैर ही हलक से उतारने की कोशिश कर बैठा है। फिर 2-3 मिनट बाद डॉक्टर दुआगू का सामना हुआ और वो इमरान को इस तरह देखने लगे जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर लहक कर बोला, ओ आप हैं, फरमाइए कैसे तकलीफ फरमाई। एक और मरीज लाया हूँ, इमरान ने उस्ताद की तरफ इशारा किया। इन्हें क्या हुआ है, डॉक्टर दुआगू उस्ताद को नीचे से ऊपर तक देखता हुआ बोला। इमरान ने ठंडी सांस ली और गमनाक आवाज में बोला, इन्हें शायरी हो गई है। जी डॉक्टर दुआगू ने इन्हें आंखें फाड़ दी। चंद लम्बे बाद उस्ताद को घूरता रहा, फिर इमरान की तरफ मुड़ कर बोला, मैं नहीं समझा। ये अक्सर शिकायत करते हैं कि पिछली रात इनमें किसी मरहूम शायर की रूह हलूल कर गई थी। ओ डॉक्टर दुआगू फिर उस्ताद की तरफ तशवीश को नजरों से देखता हुआ बोला, आई सी, आप कब ऐसा महसूस करते हैं कि आप में किसी शायर की रूह हलूल कर गई है। जी उस्ताद ने खंकार कर रहम तल नजरों से इमरान की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोले, जी मैं बम्बई में था कि एक दिन से मुलाकात हो गई थी। ओ डॉक्टर दुआगू के होठों पर एक पल के लिए हल्की सी मुस्कुराहट की लर्जिशें नजर आईं और फिर मादूम वो तवज्जो और दिलचस्पी से उस्ताद की तरफ देख रहा था। और जी ये लोग मेरी उर्दू शायरी की कदर करते हैं, लेकिन मैं इसे कुछ भी नहीं समझता। मेरा असल रंग देखना हुआ तो फारसा में सिमिए। फारसा, डॉक्टर दुआगू ने हैरत से दोहराया। ये मुसीबत भी है, इमरान ने सर हिलाकर कहा, उस्ताद की शायरी में मादा हो जाता है और मादा नर, इसीलिए इनकी गिरफ्त में आते ही फारसी भी फारसा हो जाती है। हाँ हो जाए उस्ताद फारसा में कुछ। उस्ताद ने हसबे आदत छत की तरफ मुंह उठाकर नाक भौंओं पर जोर देना शुरू कर दिया, फिर बोले, सुनिए नजर खमी खमी, नजर गुमी गुमी, नजर सुमी सुमी, धमक टसक फजू फजा फसूनी, हया लबम लबम अशर खमू शैली, खमू अशर फशा नमू जमू रोम, कली वकल वनी वकल फनु फकी कना फकल कलम, नजर खुमी खुमी, नजर गुमी गुमी, नजर सुमी सुमी। बस बस डॉक्टर दुआगू हाथ उठाकर नाखुशगवार लहजे में बोला। फिर इमरान चंद लम्हे घूरते रहने के बाद कहा, आप किस बिना पर समझ बैठे हैं कि जहनी तौर पर अलील हैं? मैं बात यह है कि इमरान हकलाकर खामोश हो गया। आप गलत फहमी में मुबतला हैं। बाज लोग खुद उल्लू बनकर दूसरों को उल्लू बनाने के माहिर होते हैं। जी क्या मतलब? उस्ताद ने तेवरी चढ़ाकर पूछा। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ। डॉक्टर दुआगू का लहजा बेहद खुश था। इमरान ने उस्ताद को खामोश रहने का इशारा किया। वो सच में बेहद समझदार साबित हुए, यानी चुप साध ली। डॉक्टर दुआगू ने राइटिंग पैड से कागज का एक टुकड़ा अलहदा किया और उस पर कुछ लिखने लगा और फिर वही टुकड़ा इमरान की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, मार्था से अपने रुपये ले लीजिएगा। कैसे रुपए? इमरान ने मुतहयराना अंदाज में कहा, जो आपने बतौर कंसल्टेशन फीस जमा कराए थे। क्यों, क्या आपका इलाज नहीं करेंगे? लाइलाज मर्ज है, डॉक्टर दुआगू मुस्कुराया। फिर अब क्या होगा? इमरान ने घबरा कर पूछा, कोई खास बात नहीं, फिक्र ना कीजिए। अगर ये वाकई मर्जी है तो कब्र तक साथ जाएगा। मेरे खुदा अब मैं क्या करूं? इमरान कुर्राहा और फिर दोनों हाथों से सर थाम कर कुर्सी पर रुकरू बैठने की कोशिश करने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर दुआगू ने टोका। ओ माफ कीजिएगा, इमरान संभल गया, लेकिन इसके चेहरे पर उलझन के आसार साफ पड़े जा सकते थे। इनसे आपका क्या रिश्ता है? डॉक्टर ने इमरान से पूछा। कबल इसके कि इमरान कुछ कहता, उस्ताद ने उछलकर एक शेर इनायत कर दिया। पूछो हो रिश्ता हमसे फसरदा बहार, पूछो हो रिश्ता हमसे फसरदा बहार, हम रहने वाले हैं इसी उजड़े मजार के। मिस्टर इमरान, डॉक्टर दुआ झुंझला कर बोला, आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ओ जी हाँ, हिप। इमरान तेजी से उठा और उस्ताद का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचता चला गया। बहुत हरामी मालूम होता है, उस्ताद ने कमरे से निकलकर आहिस्ता से कहा, और इमरान इन्हें कोई जवाब दिए बगैर बरामदे तक खींच लाया। अच्छा उस्ताद, इमरान जेब से 5 का एक नोट खींचता हुआ बोला, ये लीजिए और टैक्सी से वापस चले जाइए। उस्ताद ने दांत निकाल दिए, थोड़ी देर तक हंसते रहे, फिर बोले, अब आप वहाँ इस ज़ादी शुगर के पास तशरीफ ले जाएंगे। ज़ादी शुगर? इमरान ने हैरत से कहा। मैं नहीं समझा उस्ताद, मैं आपकी महबूबा पर भी शायरी करूँगा। उस्ताद? इमरान हाथ जोड़कर घबराया। अभी इसकी उम्र ही क्या है? अगर आपका अरबाया फारसा चल गया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रह जाएगा। नहीं, एक गजल ज़रूर होगी। उस्ताद गर्दन झटक कर बोले, आपकी मर्जी। इमरान मुर्दा सी आवाज़ में बोला। उस्ताद मनीखेज अंदाज में सर हिलाते पूरब से गुजर गए। इमरान इन्हें जाते देखता रहा, फिर इसी कमरे में वापस आ गया जहां मार्था बैठी थी। इमरान की वापसी पर खिल सी उठी। क्यों, क्या हुआ? इसने मुस्कुरा कर पूछा। लाइलाज मर्ज था, डॉक्टर ने इलाज करने से इनकार कर दिया, ये लो। इमरान डॉक्टर की दी हुई पर्ची जेब से निकालकर इसके सामने रखता हुआ बोला, खुशकिस्मत हो। मार्था पर्ची पर नज़र डालकर हंस दी। डॉक्टर ने आज तक कंसल्टेशन फीस वापस नहीं की। इतने में मेज पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बजी और मार्था ने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। कुछ सुनकर हंसी और रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, डॉक्टर। हेलो, इमरान ने रिसीवर संभाल कर माउथ पीस में कहा। इमरान स्पीकिंग, क्या तुम मुझसे किसी किस्म का मजाक कर रहे हो साहबजादे? निन निन नहीं तो, डॉक्टर डॉक्टर, इमरान हकलाया। फिर इस लगबियत का मतलब क्या था? मैं हकीकतन उस्ताद के लिए बहुत परेशान हूँ। अपने शेर ही की तरह वो भी नाजिल होते हैं और पीर चस्नापा बन जाते हैं। मैं वाकई, क्या तुम संजीदा हो? बिल्कुल। तो अच्छा, इनकी शादी करा दो। ओहो, बड़ी दिलखराश चीख थी। इमरान का दिमाग झुंझुना उठा और वो रिसीवर फेंक कर बेतहाशा डॉक्टर के कमरे की तरफ दौड़ा। डॉक्टर फर्श पर औंधा पड़ा, गहरी गहरी सांसें ले रहा था और इसकी कुर्सी इस पर उलट पड़ी थी। मार्था इमरान के पीछे ही पीछे आई थी और अब इसकी बौखलाहट का यह आलम था कि कभी दौड़कर दरवाजे की तरफ जाती और कभी डॉक्टर दुआगु के चकराने नगे गालबन। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। इमरान पहले रुका था, इससे एक इंच भी आगे ना खिसका, बस खड़ा मुतहयराना अंदाज में पलके झपका रहा था। ओ, कुछ करो, मार्था ने इमरान से कहा, जो बुरी तरह हाँप रही थी। कुछ समझ में भी तो आए, इमरान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। पता नहीं क्या हुआ, पुलिस को फोन करो। नहीं नहीं, तुम जरा देखो क्या बात है, इन्हें सीधा करो। इमरान ने आगे बढ़कर डॉक्टर को उल्टी हुई कुर्सी उठाई और मार्था इन लोगों से वापस जाने को कहने लगी, जो वेटिंग रूम से उठकर इसी कमरे के दरवाजे पर इकट्ठा होने लगे थे। इमरान ने डॉक्टर को सीधा किया और उसका जिस्म टटोलने लगा, फिर पलकें उठाकर पुतलियां देखी और मनी खेज अंदाज में सर को जंबी दी। क्या बात है? वो मेरी एक चची हैं, वो भी अक्सर इसी तरह बेहोश हो जाती हैं, हिस्टिया कहते हैं इसे शायद, हश्त। मार्था ने बुरा समूह बनाया और डॉक्टर पर झुक गई। अब इमरान गिर्दोपेश का जायजा ले रहा था। डॉक्टर की मेज के करीब वाली खिड़की खुली थी, वो खिड़की की तरफ पुश करके बैठा था। मेज के करीबी फर्श पर इसे बिलूरी गुलदान के टुकड़े नजर आए जो इसी मेज पर रखा था। कलमदान से रोशनाई ना सिर्फ छलकी थी बल्कि मेज पर भी फैल गई थी। एक कागज के टुकड़े पर इमरान की नजरें जम गईं। वो या तो किसी कुत्ते के पंजे का निशान था या किसी बिल्ली के पंजे का। पहले मेज पर फैली हुई रोशनाई पर वो पंजा पड़ा होगा और फिर कागज पर अपना निशान छोड़ गया होगा। इमरान ने मार्था की तरफ देखा और कागज का वो टुकड़ा उठाकर जेब में डाल लिया। मार्था इसकी तरह मुतवज्जा नहीं थी। कुछ देर तक वो इधर उधर सरगिरदा रहा, फिर डॉक्टर की तरफ मुतवज्जा हुआ जिसे अब चंद मुलाजमीन ने उठाकर सोफे पर डाल दिया था। मैं कहता हूँ किसी डॉक्टर। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मार्था बोली, लेकिन इसके चेहरे पर सरासीमी के आसार थे। इमरान वही कुर्सी खिसका कर बैठ गया जो कुछ देर पहले डॉक्टर दुआगू पर उल्टी पड़ी थी। हद से ज्यादा जिसम ढीला पड़ गया था और टांगे हिल रही थी। थोड़ी देर बाद मार्था इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। तुम जाओ, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? मेरी कोई कंसलेशन फीस नहीं है, इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया। अगर मैं कहूं कि अब यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तो? मार्था झुंझला कर बोली, तो मैं अर्ज करूंगा कि हम दिन भर बेहतरी गैर जरूरी चीजें भी बर्दाश्त करते रहते हैं, इसलिए तुम्हारा ये जुमला कतई गैर जरूरी है। नहीं, तुम जाओ, मार्था यक बेर ढीली पड़ गई। शायद डॉक्टर होश में आने वाला तुम्हारी मौजूदगी पसंद ना करें। क्या तुम्हें तवक्का है कि डॉक्टर अब कभी होश में भी आ सकेंगे? क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर के लिए फौरी तौर पर टिबी इमदाद फराहम करो, वरना ये बेहोशी दायमी नींद में भी तब्दील हो सकती है। क्या तुम्हें डॉक्टर की बाएं कलाई पर पड़ी हुई खराशें नजर नहीं आ रही हैं? मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं, मार्था ने अपनी पेशानी पर बाएं हथेली रगड़ते हुए कहा। तुम ऐसे करो कि मुझे टिबी इमदाद के लिए फोन करने की इजाजत दे दो। मार्था ने फिर बेहोश डॉक्टर पर नजर डाली और बेबसी से इमरान की तरफ देखने लगी। अब फोन पर किसी का नंबर डायल कर रहा था। उसने किसी से एम्बुलेंस के लिए कहा था। पता बताकर सिलसिला मुनकता कर दिया। अब वो मार्था की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मार्था ने होश सिकोड़े और इसकी तरफ देखने लगी। तकरीबन 20 मिनट तक वहाँ खामोशी का राज रहा। फिर एक मुलाजिम कमरे में दाखिल होकर एम्बुलेंस की आमद की इतला दी। इमरान कुर्सी से उठ गया। सिविल अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में लोग पहले से मुंतजर थे। बेहोश डॉक्टर को स्ट्रेचर पर डालकर अंदर पहुंचा दिया गया। मार्था भी साथ आई थी। इमरान और वो बरामदे में बेंच पर खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर अंदर से आकर इमरान से बोला, कलाई पर पाई जाने वाली खराशों ही के जरिए कोई जहरीला मादा जिस्म में फैल गया है। क्या वो मर जाएगा? इमरान ने पूछा। कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत देर कर दी आप लोगों ने। अल्लाह मालिक है, डॉक्टर फिर वापस आ गया। मैं पूछती हूँ वो चीखता क्यों था? मार्था बोली। मैं भी यही पूछना चाहता हूँ, मगर किससे पूछूं? वो क्यों चीखा था? मार्था इस तरह बड़बड़ाई जैसा खुद से मुखातिब कलाई पर खराशें कैसी हैं? कमरे में इसके अलावा और कौन था? सोचती रहो, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैं पूछती हूँ आखिर तुम अपना वक्त बर्बाद क्यों करते फिरते हो? अस्पताल वालों से मेरी पुरानी जान पहचान है, तुम बेफिक्र रहो, जहन्नुम में जाओ, मार्था ने दूसरी तरफ मुंह करके कहा। जहन्नुम में तो इससे भी पेचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। खामोश भी रहो, वो झुल्ला कर पलट पड़ी। क्या ये जरूरी है कि जहां बैठो बस टाई टाई करिए जाओ? इमरान कुछ कहने ही वाला था कि वही डॉक्टर फिर आकर बोला, इसके अलावा और कोई नहीं कि सारा खून निचोड़ कर दूसरा खून पहुंचाया जाए। कुछ करो और जल्दी करो, मार्था ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। इसने कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे कि एक नर्स झपटी हुई निकली और हाथ हिलाकर बोली, होश आ गया है? गुड, डॉक्टर इसकी तरफ मुड़ा और फिर इमरान से कहने लगा, अब ठीक, बिल्कुल ठीक, शायद खून निचोड़ने की जरूरत पेश ना आए। फिर वो तेजी से अंदर चला गया। मैं डॉक्टर दोगु से दो बातें किए बगैर हरगिज वापस ना जाऊंगा, इमरान ने मार्था से कहा। तुम्हारा दिमाग चल गया है, वो तुम्हें इससे गुफ्तगू करने देंगे? हरगिज नहीं, फिर भी कोशिश कर देखने में क्या हर्ज है। इस बार मार्था ने जबान से तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन आंखें कह रही थी कि तुम, मैं जाऊं। फिर 2 घंटे गुजर गए। इस दौरान में डॉक्टर की खैरियत बराबर मालूम होती जा रही थी। इमरान इसकी बतदरी सेहतियाबी की इतलात पर बेहद मसरूर होता रहा था और मार्था बतफक्कुर आंखों से देखती रही थी। फिर आखिर वो बोल ही पड़ी, आखिर तुम इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? आदत बुरी बला है, बचपन ही से इस मर्ज में मुबतला हूँ, दूसरों में रहना मेरी हावी है। बड़ा दिलचस्प मशगला है। अभी पिछले दिनों की बात है कि लेडी तफसील ने बेगम अस्पहानी के मुताबिक एक पार्टी में कहा था कि इनका बाप यकीनन एक ब्लंद पाया मोची था। बात चुपके से खातून के कान में कही थी। मैं इनके करीब ही था, सब कुछ साफ सुना और जाकर जड़ दिया। अस्पहानी से बस फिर क्या था, मज़ा आ गया। चंद ही रोज बाद एक दूसरी पार्टी में सफहानी ने लेडी तफसील की चिटिया पकड़ ली। अरे तौबा तौबा, कैसा धमाधम मार रही थी वो। दोनों मुआज़िज़ ख़वातीन एक दूसरे को, तुम बहुत वाहियात आदमी मालूम होते हो, मार्था हंस पड़ी। वाहियात नहीं, डिप्लोमेट कहो, इमरान संजीदगी से बोला। मार्था भी संजीदगी से ऐसे घूमने लगी। फिर इमरान उठा, एक तवील अंगड़ाई ली, आंखों से इधर उधर देखता हुआ मुंह चलाने लगा। अच्छा, इसने ठंडी सांस लेकर कहा, अब चलना चाहिए। हरगिज नहीं, मार्था ने सख्त लहजे में कहा, तुम हमारे साथ ही वापस चलोगे। अरे नहीं भाई, मैं बहुत मशगूल और अदीमुल फुर्सत आदमी हूँ। अच्छा, मार्था ने तमफ़खुर आमेज तहैर के साथ कहा, तुमने ये बात पहले कभी नहीं बताई। पार्ट फोर यहाँ पर अख्ताम पजीर होता है। नॉबल डॉक्टर दुआगु का बकिया हिस्सा पार्ट फाइव में समाप्त फरमाइए।